तुम्हें क्या लगता है, जो भी है वो बेवकूफ है? नो, रिपोर्टर से जानते हम कुछ तो भी। हम फिलहाल उस तक नहीं पहुंच सकते। बहुत चालाकी से काम किया है विनीत। रिपोर्टर को मरवाकर उस शख्स को सेव किया गया है जो उसके लिए काम कर रहा है। ऐसे काम डायरेक्ट कोई नहीं करता है। तुम्हें क्या लगता है, जो भी है वो कोई कच्चा खिलाड़ी है? नहीं, अयांश मेहरा की लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है उसे, और मुझसे दुश्मनी निभाने के वो काबिल है। आसानी से सामने आ जाए, नॉट पॉसिबल। वो कांस्टेबल पकड़ में नहीं आने वाला, तो क्या उसके लिए काम करने वाला शख्स आता? जब यही नहीं आ रहे हैं तो दुश्मन कैसे आएगा? अयांश, तुम जैसी बातें कर रहे हो ना, ये तुम पर सूट नहीं करती। एक बार नहीं, दो बार हो चुका है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इंस्पेक्टर को बोलो ना, ढूंढे अब उस कांस्टेबल को, और उस रिपोर्टर के केस को भी बंद कर दे। अयांश ने जैसे ये कहा तो विनीत चौंकते हुए सोफे से उठ गया। क्या अयांश, क्या कह रहे हो तुम? अयांश सोफे से उठते। सही तो कह रहा हूँ, वो नहीं मिलने वाला। क्यों टाइम वेस्ट करना? पुलिस स्टेशन में उस कांस्टेबल ने उस रिपोर्टर की जान लेने का काम कर दिया, किसी को भनक भी नहीं लगी। अब क्या कर लेंगे, जबकि वो पकड़ में आने ही नहीं वाला? फालतू में टाइम वेस्ट होगा, हमारा करेंगे वो अलग। जो भी है बहुत शातिर है, कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। मुझे गंभीरता और एटीट्यूड भरे लहजे में, मुझे मेरा दुश्मन चाहिए ना, ना कि उसके लिए काम करने वाले। जब तक उसका पता नहीं लगता है, प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, और मुझे प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है। मास्टरमाइंड कोई और है, और वो बहुत शातिर है। ये सब जानते हुए भी तुम लाइटली ले रहे हो अयांश? देखो अयांश, कोई गड़बड़ कोई नुकसान नहीं। फैमिली के कितने लोग हैं, किसी की वजह से यहाँ किसी को कुछ हुआ तो सही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे फिक्र नहीं है? डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा। घर की सिक्योरिटी टाइट है। वर्तिका अभी की सगाई के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोई बिना चेकिंग के एंटर नहीं कर पाएगा। प्रेस मीडिया वाले आएंगे ही नहीं सगाई के फंक्शन में, ये बात पहले ही हो चुकी है। सो सब ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। रियली? चलो मान लिया टेंशन की बात नहीं है, वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। है भी टेंशन तो तुम खुद संभाल ही लोगे, संभाल लेना। ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जो हो अयांश, तुम्हारे रहते फैमिली को, हम सबको कुछ भी नहीं होने वाला है। आई नो, तरुण से सुना सबकी सेफ्टी का तुम अच्छे से प्रबंध कर चुके हो। रिस्की कोई बात नहीं, पर जो भी दुश्मन बन बैठा है उस बारे में अयांश मेहरा को कैसे पता चलेगा, वो तो बता दो। जानना जरूरी है तुम्हारा? जरूरी तो नहीं, दुश्मन का पता चल गया तुम्हें और वो दुनिया से अलविदा भी हो जाएगा, तब भी मुझे तो खबर होने से रही। तुम चाहो तो पता चले, वरना नहीं। फिर भी तुम बताना चाहो तो बता दो, नहीं तो रहने दो। वैसे भी मैं कौन सा सब जानता हूँ। अब पुलकित रॉय को ही ले लो, वो तो मैं जबरदस्ती साथ चला गया तुम्हारे, तो जान गया उसको, नहीं तो उसे भी कभी नहीं जानता। मुझे तो ये तक नहीं पता तुम काम क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, तुम्हारे अंडर काम कौन कौन करता है। विनीत एक ही सांस में बोल रहा था कि तभी अयांश को अजीब सी नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर चुप हो गया और वापस सोफे पर बैठ गया। अयांश भी वापस सोफे पर बैठ गया। जो ज़रूरी होता है तुम्हारा जानना, वो तुम्हें पता चल जाता है, तुमको बता दिया जाता है। सो जितना जानते हो उतने में ही खुश रहो। और रही बात दुश्मन की, तो वो अभी खुद सामने आएगा, जिसका मुझे भी इंतज़ार है। हम दुश्मन तक नहीं, जिसको दुश्मनी निभाने का शौक चढ़ाए वो खुद ही हमारे पास आएगा। इस वक्त अयांश के होठों पर डेविल मुस्कान आ बैठी थी। ये देख विनीत तपाक से बोल पड़ा, और कैसे आएगा? अयांश उसकी ओर देख, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा तो दुश्मन फिर से दुश्मनी का खेल खेलेगा, और इस बार वो बच नहीं पाएगा। ओह, तो इसलिए तुम चाहते हो कि पुलिस टीम कांस्टेबल को ना ढूंढे? विनीत कुछ सोच भौंय चढ़ाते फट से बोला। बस एक फोटो चाहिए उस कांस्टेबल की, फोटो पुलकित रॉय को भेजनी है, बाकी वो हैंडल कर लेगा। आई थिंक दुश्मन पकड़े जाने के डर से कुछ वक्त तक कुछ ना करे, बट नेक्स्ट टाइम बच नहीं पाएगा। सख्त एक्सप्रेशन के साथ अयांश ने जैसे ही ये कहा तो विनीत फट से उसके पास आ बैठा। इसका मतलब तुम अपने तरीके से उसका पता लगवाओगे। दुश्मन को लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, बट सामने से कुछ नहीं होगा, पर कुछ जरूर होगा जिसके चलते इस बार वो हमारी गिरफ्त में होगा, है ना? काफी स्मार्ट हो चुके हो। अयांश ने विनीत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा। विनीत मुस्कुरा दिया। स्मार्ट तो मैं हमेशा से हूँ, बस तुम्हें ही कभी कभी नजर आता हूँ। रियली? अयांश ने कहा कि तभी वहां आरवी आ गई। मिस्टर मेहरा? अयांश, विनीत दोनों ने दरवाजे पर खड़ी आरवी को फट से देखा। आरवी अंदर आते दोनों की ओर देख, क्या हुआ, आप दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप दोनों पर कोई बम फोड़ने आई हूँ? विनीत हंसते हुए, तुम फोड़ दे सकती हो? आरवी, अच्छा जी। विनीत, हाँ अपने हस्बैंड से पूछ लो। आरवी अयांश की ओर देखते, इनसे क्या पूछना, ये खुद ही बहुत बड़े बम है। वैसे आपको पता है क्या आज इन्होंने बहुत बड़ा बम फोड़ा है मेहरा सदन में? विनीत सोफे से उठते, बिल्कुल, जिसके धमाके का असर तुम्हारे चेहरे पर खुशी बन झलक रहा है। वैसे वो बम कहाँ से लाना है मैंने ही बताया था अयांश को, वैसे सिर्फ बताया मैंने,
पसंद जाने मन की ही है। आते ही देखा मैंने मंदिर। सच में अयांश बहुत अच्छा मंदिर लेके आए हो तुम आरवी के लिए। आरवी अयांश की ओर देखते, पसंद लाजवाब है मिस्टर मेहरा की। विनीत हंसते आरवी की ओर आते, आज पता चला है क्या? रोज आईना देखा करो तुम, रोज ही पता चल जाएगा कि अयांश की पसंद सच में लाजवाब है। सही कहा ना अयांश? अयांश आरवी की ओर देखते, या देख तो ले हम रोज आईना, कमबख्त डर लगता है कहीं कोई दुश्मन बन बैठा तो, बेचारा यूं ही बिखर कर टूट जाएगा। दोनों एक दूजे की ओर मुस्कुराते देखे जा रहे थे, तभी विनीत बोल पड़ा, मैं हूं यहाँ। आरवी हंसती, आई नो, अच्छा चलिए खाना खा लीजिए, हम आप दोनों को बुलाने आए हैं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से, दरवाजे की ओर इशारा कर, चलिए। विनीत आगे चलते, हाँ चलो, भूख तो हमें भी लगी है। अयांश भी वापस सोफे से उठ चल दिया, तभी आरवी उसके पीछे से उसकी पीठ पर लटक गई। अयांश उसे संभालते हुए, क्या कर रही हो, कुछ खाया नहीं तो चलने की हिम्मत नहीं? भूखे होने के बावजूद भी हम सीढ़ियां चढ़कर आपको लेने आए हैं, अब आप भी लेकर चलिए ना हमें। आरवी अयांश के कंधे पर चेहरा टिकाते बोली। अयांश कुछ कहता कि विनीत दरवाजा खोलते बोल पड़ा, अयांश तो लेकर चलेगा आरवी तुम्हें, पर तुम्हारी चाची जी ने देख लिया तो क्या होगा? याद है ना तुमने बहाना बनाया था उनके आगे कि अयांश को कमर में मोच आई है, सो अब ऐसे तुम्हें वेताल जैसे अयांश पर लटके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा अयांश को कोई कमर दर्द नहीं है। सोचो फिर क्या होगा, उनको पता चले या ना चले, ये मुझे सच में कमर दर्द देकर ही रहेगी, जो इसका कहा झूठ भी सच हो जाए। अयांश बोल रहा था कि आरवी बोल पड़ी, इतनी भी भारी नहीं हूं मैं जो मुझे उठाने से आपकी कमर में मोची आ जाए, चुपचाप लेकर चलिए। फिर अयांश कुछ नहीं बोला, विनीत ने पूरा डोर खोल दिया, अयांश आरवी को कमरे से बाहर ले आया। तभी विनीत मंद मंद हंसते हुए बोल पड़ा, जिसके आगे कोई नहीं बोलता, बीवी के आगे उसकी बोलती बंद। अयांश ने उसे घूरा, पर विनीत का हंसना बंद ना हुआ। तभी आरवी बाहर आते ही अयांश की पीठ से उतर गई, अब हम चल लेंगे। अयांश भौंसे कोड़ते, अब क्या हुआ, लेकर जा रहा था ना?
आरवी नीचे की ओर इशारा कर, चाची जी दादी माँ के रूम में है, दादी माँ के पैरों में तेल लगा रही है, पता चले हम दोनों विक्रम वेताल जैसे नीचे पहुंचे, चाची जी दादी माँ के कमरे से बाहर निकल आए और हम दोनों की बैन बच जाए, आपको उनके पैर पड़ना पड़ेगा आशीर्वाद हेतु और मुझे पड़ेगी मार, सो चाची महाराज के आगे नो रिस्क, सच में लेने के देने पड़ जाएंगे, उनकी सुनने से अच्छा है मैं खुद चल लूं। विनीत हैरान होते, कितना डरती हो आरवी तुम अपनी चाची जी से? आरवी कुछ कहती कि अयांश बोल पड़ा, चलो कोई तो है जिससे ये डरती है। ये सुन आरवी ने एक पल घूरा और दूजे ही पल बतीसी दिखाते अयांश के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते बोली, पहली बात आरवी चतुर्वेदी मेहरा किसी से डरती नहीं, अपने डेविल हस्बैंड से भी नहीं, मेरी चाची तो फिर भी आप जितनी डेंजरस नहीं है। अयांश भोए से कोड़ते, मैं डेंजरस हूं? क्रमशः